दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ।
ओम शांति डेनिस पेन, आपका स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आप दृष्टि द्वारा सृष्टि इस प्रस्तुति में शामिल हैं। पूरे विश्व के परिवार की तरफ से आपका स्वागत है, धन्यवाद और ओम शांति। जैसा कि आप जानती हैं कि आज हम स्वर्णिम युग के विषय पर मनन चिंतन करेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके ज्ञान के शुरुआत के दिनों में आपको सतयुग का विचार कैसे पेश किया था और आपने उसे कैसे स्वीकार किया, आपने उसके बारे में कैसे सोचा, आपके अनुभव क्या थे, क्या आपको कोई खास साक्षात्कार हुए ट्रांस में, आपने सतयुग के विचार को कैसे ग्रहण किया और आपके शुरुआत के दिनों में आपके अनुभव क्या थे? हाँ, मेरे ज्ञान के शुरुआत के दिनों में मुझे कई दृश्य दिखाई दिए और कई साक्षात्कार और ट्रांस के अनुभव भी हुए। वास्तव में ज्ञान के पहले भी मैं कृष्ण को देखा करती थी, वह मेरे सामने आते रहते और मैं उनको कहती कि पता नहीं आप मेरे पीछे क्यों आते हो, क्योंकि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। पर तभी मुझे ज्ञान की कोई समझ नहीं थी। मैंने वास्तव में कुछ बहुत ही खास कृष्ण के साक्षात अनुभव किए हैं और उस आधार पर मैं कहूंगी कि वहाँ के नजारे, वहाँ के तत्वों के विशेष गुण आज के कृष्ण के चित्र अंश भर भी प्रस्तुत नहीं कर पाते। अभी के चित्रों में स्वर्णिम युग के जो दृश्य और तत्वों के गुण दिखाए हैं, वह असल की वास्तविकता से बहुत ही अधूरी तस्वीर दिखा पाते हैं। यह दुर्भाग्य है, पर हम इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। बाबा कुछ बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कराते हैं, जो उस अनुभव को अपने में संजो कर रखते हैं और स्वर्णिम युग की सुंदरता, विशेषता, असाधारणता को जानते हैं। मुझे याद है कि उस सतयुग के अनुभव का चित्र बनाने के प्रयास में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि स्वर्णिम युग में प्रकृति और तत्वों के गुण और लक्षण आज की प्रकृति और तत्वों के गुणों से बहुत ही अलग हैं। जैसे वहाँ अभी सब कुछ बहुत ही स्थूल रूप में है और वहाँ सभी कुछ बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म है, बहुत ही अलग होगा और हम शायद यह कल्पना नहीं कर सकेंगे कि वह अति सुंदर सा स्वर्णिम युग आज दिखने वाली इस धरती पर ही है। यह एक बहुत ही विशाल अंतर है और बहुत ही असाधारण सुंदरता है। मैं समझती हूँ कि उस स्तर की सुंदरता आज के समय में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी और मैं यह कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इस दुनिया के काफी सुंदर स्थल देखे हैं। क्या आप हमें कपोल कल्पना फैंटेसी की दुनिया से हटाकर वास्तविक स्वर्णिम युग की दुनिया से परिचित करा सकती हैं? हमें अभी तक कुछ साधारण से स्वर्णिम युग के चित्र देखे हैं, जहां एक छोटा सा फव्वारा देखते हैं, सभी के एक जैसे दिखते हसमुख चेहरे, ताज पहने हुए तस्वीरें। कई बार फॉरेनर्स इन बातों को ठीक से समझ नहीं पाते, खास तौर पे अभी के बच्चे। मैं विचार कर हूँ कि हम जानते तो हैं कि स्वर्णिम युग बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार और बहुत ही अलग होगा, पर आप किन शब्दों में उसका वर्णन कर सकती हैं कि हम इस स्वर्णिम युग को वास्तविक रूप से समझ और देख पाए? खैर, एक बात होती है कि स्वर्णिम युग को कैसे देखें और प्रकृति के गुण कैसे होते हैं उसे समझें, इसके बारे में मैंने अभी वर्णन किया है। लेकिन दूसरी बात है कि जब मैं ज्ञान में आई तब यह सारे स्वर्णिम युग के चित्र नहीं थे, केवल लक्ष्मी नारायण का प्रामाणिक चित्र था जिसकी वास्तविक बनावट और रचना मम्मा द्वारा हुई थी। मम्मा काफी कलात्मक थीं और संभवतः यह चित्र स्वर्णिम युग का अति सूक्ष्म चित्र है जो हमारे पास है। बाकी कलाकारों का काम मेरी समझ से इतना सूक्ष्म नहीं है और मैं उन बाकी चित्रों से ज्यादा प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि मैंने मेरे मन में वही बातें रखी जो मैंने बाबा की मुरलियों के वर्णन द्वारा समझी थी और मेरे स्वयं के ट्रांस के अनुभव द्वारा देखी समझी थी। मुझे लगता है कि स्वर्णिम युग को वास्तव में समझने की जरूरत है, ना कि उसे कोई तकनीकी चलचित्र, मूवी इत्यादि बनाकर देखने की, क्योंकि महत्व की बात यह नहीं है कि स्वर्णिम युग कैसा दिखता है, बल्कि यह है कि स्वर्णिम युग में मनुष्यों की विशेषताएं कैसी हैं, प्रकृति के गुण कैसे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हम ज्ञान में कहते हैं कि अगर आप एक पुरानी आत्मा हो जो उस समय से आए हो, तो स्वर्णिम युग की स्मृति आप में कहीं ना कहीं है, और जब आप खुद को ज्ञान और योग के प्रकाश में लाते हो और खास तौर पे योगा से तुम्हें उस स्वर्णिम युग का बोध होता है और स्मृति से विवेक जागता है कि हाँ, स्वर्णिम युग ऐसा है। इतिहास के उल्लेखों को देखा जाए तो कंटिन्यूस रिकॉर्ड कलयुग की शुरुआत से ही मिलेंगे। कलयुग के पहले के 600 सालों के अंधकार के दिनों के ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है। फिर द्वापर युग की शुरुआत की सभ्यता और सांस्कृतिक रिकॉर्ड हैं, जो आर्कियोलॉजिकल और पुरातात्विक रिकॉर्ड के रूप में हैं। इसके अलावा बहुत ही सुंदर प्राचीन मूर्तियों के रूप में रिकॉर्ड हैं, जो बड़ी मुश्किल से आज भी अस्तित्व में हैं। आप जानते हैं कि दिलवारा मंदिर 1000 वर्ष ही पुराना है और कलयुग के काल का है। बाकी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत नाम मात्र दिखती हैं, और वह भी इतने सालों में लूटी गई हैं, नाश किया गया है, आक्रमण किया गया है, तो ज्यादा पुरानी हिस्ट्री और इतिहास अभी नहीं है, और इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि की कल्पना शक्ति से और बाबा की मुरलियों के वर्णन अनुसार अपने अस्तित्व और सृष्टि को समझें। मुझे लगता है कि कुछ लोग यह कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, तो अगर आप कर पाते हैं तो आपका अच्छा भाग्य है। तो आप बता रही हैं कि यह ज्यादा चित्र और तस्वीर के रूप में देखने या कोई मूवी की तरह देखने की बात नहीं है, बल्कि समझने की बात है। हम यह जानना चाहते हैं कि वह कौन सी बात है कि स्वर्णिम युग की जो हमें समझनी है और जो स्वर्णिम युग को उचित तरीके से आपके लिए निर्धारित करती है। मुझे लगता है कि यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको इस पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस समय की कला संग्रहालय, आर्ट म्यूजियम इत्यादि से खुद को बाहर ट्रांसपोर्ट करना होगा और स्वयं के अस्तित्व के पहलुओं पर ध्यान देना होगा, इस पहलू की कल्पना करनी होगी और अंदर की रचनात्मक और काव्य शैली को निखारना होगा। अक्सर कई लोग यह मानते हैं कि स्वर्ग धरती पर नहीं है, क्योंकि आज की धरती ही कितनी अलग है और हम अपनी एक दिशा की लीनियर सोच से अपने पिछले अतीत में पीछे और पीछे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बीच में बड़ा फासला है। समय चक्र के एक तरफ से दूसरे तरफ के बीच में बड़ा सा अंतराल है और गैप है। तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए यह चक्र और स्वर्णिम युग को समझना स्वयं की संकल्पना करने की, अर्थात कॉन्सेप्चुलाइज करने की क्षमता पर निर्भर करता है। हम जैसे ही ज्ञान के वर्णन के आधार पर इन बातों का विवेचन और अर्थ निकाल पाते हैं, तो इस प्रक्रिया में हम स्वर्णिम युग की समझ का सर्जन कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि मेरी समझ भी बाकी सभी की समझ से अलग होगी। मुझे यह भी लगता है कि अलग अलग लोगों के सूक्ष्म सूक्ष्म वतन के साक्षात्कार भी अलग अलग होंगे और उसका कनेक्शन हर एक के अपनी सुंदरता को ग्रहण करने की योग्यता पर निर्भर है। उदाहरणतः बाबा किसी को दिव्य साक्षात्कार कराते हैं तो वह उस आत्मा की मान्यताओं के आधार पर होता है। कुछ लोगों को कुछ चीजें मोटे तौर पर दिखेंगी और वही चीज मुझे शायद काफी बारीकी से नजर आए, मेरी सुंदरता को ग्रहण करने की क्षमता अनुसार। तो यह बातें काफी सब्जेक्टिव और व्यक्तिनिष्ठ हैं। जब स्वर्णिम युग के विज्ञान की बात आती है, स्वर्णिम युग में सबसे श्रेष्ठ विज्ञान है जो मनुष्यता की सेवा करता है, जहाँ बहुत थोड़ी सी आबादी है और सबसे उत्तम आत्माएं हैं। वह समाज बहुत ही अलग होगा जहाँ अविश्वसनीय धन सौंदर्य और चहु और भरपूरता होगी। वहाँ लोगों के साथ संबंध, प्रकृति के साथ और बाकी चीजों के साथ संबंध बड़े ही हार्मोनियस और लयपूर्ण होंगे। हम अपने अंतरात्मा में महसूस कर सकते हैं कि कब हम मानसिक तौर पर और व्यावहारिक तौर पर लयपूर्ण हार्मोनियस हैं, कब हम झूठ बोलते हैं, कब हम हेरफेर करते हैं और कब हम प्रतिक्रियाशील होते हैं। यह सब इस दुनिया की बातें हैं, पर स्वर्णिम युग की जीवन शैली में ढलना एक अंदरूनी और सब्जेक्टिव व्यक्तिनिष्ठ यात्रा है। इसीलिए मुझे लगता है कि कई लोगों को संवाद करने में, विचार पेश करने में कठिनाई होती है और जैसे कुछ लोगों को पुरानी चित्रकला बड़ी रोचक लगती है, वहीं कुछ और लोगों को उन्हें देखकर कुछ नहीं होता। आपके मनन चिंतन और ज्ञान सागर मंथन करने में स्वर्णिम युग की बातों का कितना हिस्सा होता है, खास तौर पर अभी के समय में?
Golden age for you, that future world. How much do you think about the future world and what does it mean to you at the moment?
मेरे लिए जो अंदरूनी और व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं को एक आध्यात्मिक लय, अंदरूनी सामंजस्य और सुंदरता बनाने के लिए करते हैं, इन बातों के लिए स्वर्णिम युग का मनन चिंतन उचित है। वैसे तो मैं पिछले 40 सालों से ज्यादा वर्षों से स्वर्णिम युग के बारे में सुन रही हूँ। शुरुआत में प्रश्न आता है कि क्या यह वास्तविकता है, और फिर आप इस बारे में और सोचते हो, लेकिन इस समय जिन बातों का हम सामना कर रहे हैं वह है मनुष्य सभ्यता की गिरावट की, और वह लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है उनके लिए बहुत ही भयानक बात है, लेकिन वह लोग जिन्हें ज्ञान है उनके लिए यह बातें ठीक हैं, क्योंकि वह इस समस्या के आगे देख सकते हैं और जानते हैं कि इसके बाद क्या आने वाला है। मेरे हिसाब से यह दृष्टिकोण बहुत ही उचित है। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम सृष्टि द्वारा सृष्टि की एक मूल सिद्धांत है कि अगर आपको कोई दुनिया में जाना है तो आपको वह पहले से ही देखनी होगी। वह दृष्टि आपको जहाँ जाना है वहाँ ले जाएगी, और इसके पीछे भावना थी कि अगर काफी लोगों को वह दृष्टिकोण, वह उत्साह, वह निश्चय, वह लक्ष्य हो उसे निर्माण के प्रति, तो उसका निर्माण मुमकिन है। उसी तरह जैसे कि इमारत बनाने के पहले उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं और फिर बनाते हैं। इसी सिद्धांत से आपको क्या लगता है कि हमें कौन सी प्रक्रिया से गुजरना है इस नई दुनिया को सक्रिय और एक्टिवेट कर सकने के लिए? क्योंकि इस दुनिया की घोषणा कई सालों से हुई है और अभी तक ना ही आई है, तो आपको क्या लगता है कि किस बात की जरूरत है दृष्टि द्वारा देखने की, और आप इस प्रक्रिया को कैसे होते देखते हैं? मुझे लगता है कि बहुत ही थोड़े बीकेर्स को यह दृष्टि, यह विजन होगी जो वास्तविकता से मेल करेगी। तो मैं नहीं समझती कि दृष्टि द्वारा सृष्टि को देख पाने एक उपाय है स्वर्णिम युग को लाने के लिए। मेरी समझ से स्वर्णिम युग को महसूस कर पाना और उससे लय मिला पाना जरूरी है। यह ज्ञान के आधार पर भविष्य देख पाने की क्षमता बढ़ाने से उपलब्ध होगा, क्योंकि हम योगा के आधार पर सृष्टि चक्र के किसी भी समय में यात्रा कर सकते हैं। और अक्सर बाबा हमें स्वदर्शन चक्र चलाने को कहते हैं, और अच्छे योग अभ्यास की प्राप्ति है कि योग्य समय पर हमें विजन और साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा है कि सभी को साक्षात्कार होंगे और अलग अलग तरह के होंगे, पर एक और बात बाबा ने कही है कि स्वयं को सत्व प्रधान बनाओ, क्योंकि स्वर्णिम युग भी सत्व प्रधान है। हम सभी इस समय तमो प्रधान हैं और हमें सत्व प्रधान अवस्था पर पहुंचना है। कहा जाता है कि हम स्वयं के साथ जो करते हैं उसी अनुसार हमारे बाहर की दुनिया भी बनती है। मैं इस सिद्धांत से आगे बढ़ती हूँ, न कि दृष्टि द्वारा सृष्टि से, जो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है, पर इसके और भी पहलू हैं जो समझने पड़ेंगे। एक और बात है कि दृष्टि केवल बाहरी फिजिकल स्तर पर नहीं, पर अधिक करके स्वयं के अंदर देखना और विचार करना कि हम स्वयं के अंदर कितना देखते हैं इस स्वर्णिम युग के संस्कारों को, जो जैसे आपने बताया कि पहले से ही हैं उनमें, जो स्वर्णिम युग में जा चुके हैं। तो इस तरह इस कार्यक्रम का यह भी संदेश है कि दृष्टि केवल सीनरी और तस्वीरों के माध्यम से नहीं, बल्कि स्वयं की धारणाओं में भी देखनी है। मुझे लगता है कि हम सभी में स्वर्णिम रूपी छवि है, और जितना हम बाबा से लाइट लेंगे उतना सतयुगी संस्कार जागृत होंगे और कलयुगी संस्कार सोते जाएंगे। हमें केवल स्वयं को आध्यात्मिक शक्तियों से भरना है, जो हमारे सत्व प्रधान अवस्था को सक्रिय करेगी और कलियुगी अवस्था को निष्क्रिय करेगी। हम सभी को इस शुद्ध होने की और असाधारणता को मिटाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जैसे बाबा अक्सर उदाहरण देते हैं कि सोने में जो अन्य धातु मिले रहते हैं, एलॉय होते हैं, उसे आग में जलाकर शुद्ध सोना बनाना पड़ता है। इसी तरह योग की अग्नि और प्रभु प्रेम की तीव्र इच्छा से स्वयं का सुंदर रूपांतर होगा। मुझे लगता है कि बिरले ही कोई बीके होगा जो इस प्रकार का योगा करता है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि वह दिन भी आएगा जब कुछ बीके यह तय करेंगे कि उन्हें इस प्रकार का योगा करना है। मुझे यह भी लगता है कि बहुत लोगों ने फैसला किया है कि वह ऐसा योगा करेंगे, पर वह नहीं जानते कि कैसे करें और उनमें वह तीव्रता नहीं है। यह सहज राजयोग उतना भी शायद सहज नहीं है। क्या आपके पास कोई नई युक्ति या तरकीब है उस स्तर की तीव्र योग अभ्यास करने के लिए? मुझे फिर से ऐसा लगता है कि यह एक व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। समय प्रति समय मैं खुद के साथ खास व्यक्तिगत पुरुषार्थ किया करती हूँ। एक बार मैंने 90 दिनों तक पूर्ण योग अभ्यास किया था, निरंतर 14 घंटे प्रतिदिन। यह काफी तीव्र था और इससे काफी परिणाम भी निकले थे और स्थानांतरण और परिवर्तन हुए थे। मैंने फिर से करीब 99 और 2000 के करीब तीव्र व्यक्तिगत योग अभ्यास किया, जिसका भी बड़ा परिणाम हुआ। पर मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति का इस स्तर पर तीव्र योग अभ्यास करना बहुत ही अति और एक्सट्रीम बात है। मैं एक अतिवादी हूँ तो मेरे लिए यह साधारण बात है, पर हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी फिर से ऐसा तीव्र योग अभ्यास करने की योजना आप हमें इस तीव्र योग अभ्यास में सहभागी बना सकती हैं अगर आप चाहें। हाँ जरूर, आने वाले साल में मैं इसकी योजना बना रही हूँ। सार में हम समय को क्या अर्थ दे सकते हैं? समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि काफी वरिष्ठ भाई बहने शरीर छोड़ रहे हैं, यज्ञ भी काफी बदल रहा है और जैसे लॉ ऑफ एंट्रोपी के बल से बढ़ता जा रहा है, इतने बड़े संगठन की पालना करना भी मुश्किल होता जा रहा है। बाबा भी याद दिला रहे हैं कि समय आपको पुकार रहा है, आपके दिव्य रूप आपका इंतजार कर रहे हैं, फरिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें इस समय का आह्वान का क्या अर्थ देना होगा? क्या हम और 30 साल इंतजार करेंगे कि कुछ हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम सब ज्यादा इंतजार करना होगा। हम सब बड़े पैमाने पर पतन और यज्ञ के फिर से बनने के कगार पर खड़े हैं, जैसे कि फीनिक्स चिड़िया जो आग से मरती है और पुनः जन्म भी आग से ही लेती है। मुझे नहीं लगता कि कलयुग से सतयुग की यात्रा स्मूथ और आसान यात्रा है और इसमें कई प्रलय समान बदलाव निहित हैं। मुझे लगता है कि यज्ञ में समय समय में ऐसे प्रलय जैसे क्षण आए हैं जब चीजें एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में बदले हैं। मुझे लगता है कि अभी भी हम वैसे ही बड़े बदलाव की कगार पर हैं और प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी संरक्षण कर पाएंगे, क्या हम अपनी सीट बेल्ट कमर पट्टी बांध पाएंगे और इस परिस्थिति से ऊंचा उड़ पार हो पाएंगे। यदि हम स्वयं को तैयार कर पाए तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर पाए और आशा करें कि सब पहले की तरह चलता रहे और जब वह नहीं चलता तो फिर हम भ्रमित हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अधिकतर लोग इस बात से अवगत हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है और यह स्वयं को स्थिर रख पाए, शक्तिशाली रहें, अपनी आध्यात्मिकता में रहें और मुख्य तौर पर बहुत ही स्वच्छ रहें, क्योंकि अगर आप शुद्ध हैं तो आप पार कर पाएंगे और यदि नहीं तो शायद पार नहीं कर पाएंगे। अभी इससे पहले कि हम इस चर्चा का समापन करें, क्या आपका कोई सुझाव है, कोई टॉपिक या विषय का या कोई पहलू का जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए इस प्रोग्राम सृष्टि द्वारा सृष्टि के संदर्भ में, या स्वर्णिम युग के मनन चिंतन करने में कोई और पक्ष जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए? मुझे ट्रांसम्यूटेशन अर्थात काया पलट और रूपांतर बदलाव पसंद है, ना कि छोटे छोटे बदलाव जिससे आप प्रलय भांति बदलाव लाकर सब साफ साफ देख सकें और पीछे मुड़ के ना देखें और एक नए लेवल नए स्तर के बीके हर दिन अपने को पाए। आप ब्राह्मणों में देखेंगे कि कुछ बीके छलांग लगाकर आगे बढ़ते हैं और कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यह शायद निर्भर करेगा कि आपका किस प्रकार का व्यक्तित्व है, पर मुझे यह भी लगता है कि जिस तरह से बीके परिवार का ढांचा है वह भी जैसे पुराना सा हो गया है और फिर से नए रूप से तैयार होगा। लोगों को शायद पता नहीं हो क्योंकि डबल फॉरेनर्स का उन दिनों आना नहीं शुरू हुआ था, पर जब दादी प्रकाश मणि जी ने ब्रह्मा बाबा से संचालन की डोर संभाली, उन्होंने यज्ञ में संपूर्ण रीति से बदलाव लाए। जब हम डबल फॉरेनर्स आए तो हमने देखा कि उन्होंने क्या बदलाव लाए थे। कोई इन दादी द्वारा लाए बदलावों के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करता, पर उन्होंने यह सारे बदलाव लाए थे। मुझे लगता है कि अब दादी जी के समय की पीढ़ी गायब हो रही है और आगे क्या होने वाला है यह प्रश्न है। कोई स्पष्ट रीति से नहीं देख पा रहा है कि आगे क्या होगा। किसी को भी स्मूथ और सीधा सीधा परिवर्तन का मार्ग नहीं दिख रहा है, पर यह परिवर्तन जैसा भी होगा वह प्रतिभाशाली होगा, अनोखा होगा और नएपन से भरा होगा। अगर हम उसके लिए तैयार होंगे तो हम खुद कूद कर उस नए रास्ते पर आ जाएंगे और बेशक कुछ लोगों को वह असामान्य और अजीब लग सकता है, पर मुझे लगता है कि हमें यह सोचने की जरूरत है कि स्वयं को कैसे स्थिर करें। जब बहुत सारे इस पुरानी दुनिया के आधारशील हिलेंगे और फिर संपूर्ण निर्माण होगा और इसके लिए ज्ञान के मूल समझ से ही आगे बढ़ पाएंगे। मैं गीता ग्रंथ पर काफी काम कर रही हूँ और गीता की बातों को बाबा की मुरलियों से मिला रही हूँ। इस प्रक्रिया में मैं पा रही हूँ कि काफी अच्छे रहस्य और भेद की बातें छुपी हुई हैं। इनको समझने की क्षमता बस एक स्वयं के योग अभ्यास और अपने मन को मन मना भाव एक बाबा में लगा कर रखने में है। यहाँ लंदन में काफी गहरे साइलेंस योग अभ्यास की भट्टियाँ और गहरी अंदरूनी प्रयास हो रहे हैं और उनका अनुभव है कि इस प्रक्रिया में उनके मन के अंदर के विकराल संस्कार बाहर आ रहे हैं और उन्हें उनका सामना करना पड़ रहा है। स्वयं में काफी परिवर्तन आ रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे अनुभव अभी के काफी नए बीकेस में पाए जा रहे हैं और यह जैसे एक नया नॉर्मल और नया साधारण सी बात है अभी। यह सब काफी मनोहर बातें हैं और आप में उसे सुंदर से नाटकीय रूप से प्रस्तुत करने की कला है जिसे हम इस ड्रामा का आनंद ले पाए। सिस्टर डेनिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हमें कुछ मिनटों के लिए छोटे से मेडिटेशन और मनन चिंतन स्थिति में ले जाएंगी? आप अपने कुछ विचारों से यह विजन, यह दृश्य शेयर करें कि उस आने वाली नई दुनिया की झलक कैसी होगी?
चलो हम अंदर की गहराई में चलें, अपने अंदर के उस आत्मा की रोशनी के प्रति इतने सजग हो जाएं कि बाकी सारी बाहर की चीजें खोखली और खाली लगे। अपने अंदर के आत्मा की रोशनी को महसूस करें, उस अति तेजस्वी और शक्तिशाली लाइट के अंदर जाएं जो स्वयं का अस्तित्व है, बिल्कुल अशरीरी, स्त्री पुरुष के भान से परे, कोई जाति से परे, सांस्कृतिक प्रभावों से परे। हम केवल पवित्र जीव हैं, इतने सूक्ष्म और इतने केंद्रित होने से हम आसानी से दूसरे डायमेंशन और दूसरे पहलू में पार चले जाएं। वहां हमें उस परम सत्ता, स्वयं परमात्मा का एक्सपोजर है, पहुंच है, स्वयं को अति तीव्र, प्रबल, असाधारण, असामान्य और बहुत ही सुंदर और निर्भय पाएं। अपने आप को उस रोशनी में घिर जाने दें, उस रोशनी को जैसे अपने अंदर की असत्यता को नष्ट करने दें, अपने बारे में वह सारी चीजें जो वास्तविक और सत्य नहीं है उन्हें खत्म करने दें। आप अपने मर्म, अपने मूल को छुएं, उस परम सत्ता रोशनी को भी आपके इस मर्म और मूल को छूने दें। आपको इस असीम संपूर्ण सुंदरता से भरने दें। आप इतने स्थिर, इतने शांत और इस प्रेम अग्नि से भरे हैं कि मैं खुद क्या हूँ, कौन हूँ और वह भी कौन है। आप उसको अपने दिल और भावनाओं में लीन कर दें, मिला दें, आप अपने को पृथक पाते हैं, बिल्कुल अलग, बिल्कुल न्यारे। धीरे धीरे आप इस बाहर की दुनिया में वापस लौटें। आप जानते हैं कि आपने कुछ नया सीखा है जो आपको पहले नहीं पता था, कि आप कौन हैं और आप क्या हैं, और आप अभी यह जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। ओम शांति।
ओम शांति और कोटि धन्यवाद डेनिस बेन, यह बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। आपके मन के स्थान के विचारों को, चेतना को और दिल की बातों को सुंदर अनुभव करने का। ओम शांति।